तो अगर ऐसे भौतिक दुनिया से हमें आध्यात्मिक दुनिया में जाना है, जहां हमें आज अनंत या शाश्वत जीवन हो, हमारा शरीर पूरी शक्ति से हो, कोई बीमार न हो और हमारा आनंद हो, इतना ही नहीं तो आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम। भगवत गीता में बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, भौतिक जगत जो है उसमें आनंद की शुरुआत है और अंत है, आद्यंतवंत कौन्तेय। इसमें एक कुछ क्षण क्षणभंगुर है, पर चैतन्य और कहते हैं जो आध्यात्मिक दुनिया का आनंद है वो शाश्वत ही नहीं है सिर्फ, लेकिन शाश्वत होते हुए वो हमेशा बढ़ते भी जाता है। पहले ही आनंद दाम्बुदी है, मतलब सागर जैसे महान आनंद का सागर है, जिसमें आप अभी कुछ समय पहले हम जमुना में स्नान किए तो काफी लोग अच्छे से स्नान में आनंद ले रहे थे, पानी के अंदर कोई तैर रहे थे, तो वैसे वो आनंद का सागर है भगवान की भक्ति। और ये आनंद के सागर की कोई, वैसे सागर की कोई सीमा नहीं होती। अगर हम सागर, भौतिक सागर पृथ्वी के बीच में गिर गए तो हमें सीमा दिखाई नहीं देती कहीं पे। ये कुंड भी बहुत बड़ा है पर सागर तो इससे बहुत बड़ा है। ये कुंड फिर भी काफी दूर तक है, सब लोग ऊपर से देख रहे थे कितना बड़ा है कितना बड़ा है। इतना बड़ा कुंड अभी तक शायद हमने पावन सरोवर एक है इतना बड़ा। हाँ, पर सागर है इससे बहुत, अगर सोच लीजिए सागर इस प्रकार पूरा खाली हो गया, प्रलय के समय होता है वैसे, हाँ तो हमने देखा तो कितना बड़ा कुंड लगेगा। हाँ, फिर भी अगर हम सागर के बीच में तो उसकी कोई सीमा नहीं होती, फिर भी भौतिक सागर है। अगर भगवान के भक्ति का जो सागर है आनंद का, उसकी भी कोई सीमाएं नहीं है। पर इतना ही नहीं, वो आनंद दाम्बुदि वर्धनम, हमेशा वो सागर बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे आनंदमयी अवस्था हमको प्राप्त करनी है तो बहुत आसान मार्ग है। एक तो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, वो है हरे कृष्ण मंत्र बोलना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग में कह रहे हैं कि जो कोई ये समझ लेता है कि मेरा जन्म और मेरे कार्य दिव्य है, सिर्फ इतना जान लेने पे और ये जानकर अगर हम भगवान के भक्ति में संलग्न हो जाते हैं तो त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति, हम वापस भगवान के धाम में हम वापस भौतिक जगत में जन्म ले लेते और सीधा भगवान के धाम पहुंच जाते। पर हमें इसके साथ ये जानना जरूरी है कि इतना आसान है पर ये समझना बहुत मुश्किल है। भगवान के जन्म, भगवान के कार्य, ये भौतिक इंद्रिय से समझना, हम बोलते हैं ठीक है थोड़ा पढ़ाई करेंगे समझ जाएंगे, हमने बहुत सुन लिया है अभी तक, बहुत कुछ प्रवचन सुने, भगवान के कार्य दिव्य है, कहने के लिए इतना आसान है कि खाली भगवान के कार्य दिव्य है समझ जाओ और भगवत धाम चले जाओ। पर इतना आसान नहीं भी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दशम स्कंद में, दशम अध्याय में कहते हैं दूसरे श्लोक में, नमे विदु सुरगणा प्रभवम च महर्षयः अहम आदिरि देवानां महर्षिणां च सहस्रशः, कि नमे विदु सुरगणा, मेरे को बड़े बड़े देवता भी जान नहीं सकते। नमे विदु सुरगणा प्रभवम च महर्षय, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हजारों साल तपस्या कर रहे हैं उनका मन नियंत्रण में है, बहुत कम सोते हैं और बहुत कम अन्न ग्रहण करते हैं, युक्ताहार विहार, पर उनको भी भगवान श्री कृष्ण को जानना बड़ा मुश्किल है। जब भगवान श्री कृष्ण को अवतरण धारण करने के लिए गौरांगपुर हमें डिटेल में बताएंगे, पर थोड़ी थोड़ी ट्रेलर चल रहा है, ट्रेलर जाने वाले लेक्चर का ट्रेलर चल रहा है। तो जब ब्रह्मा जी आदि देवतागण, भूमाता, इंद्र, चंद्र, सारे देवतागण क्षीर सागर के किनारे पे गए थे, तो सारे देवतागणों को क्षीर सागर के किनारे पे रुकना पड़ा, वो आगे तक बढ़ नहीं पाए। भगवान देव शिवदक्षाय विष्णु अपने शेषनाग पे लेटे हुए वहां तक वो पहुंच नहीं पाए, उनको क्षीर सागर के किनारे से ही प्रार्थना करनी पड़ी भगवान को बिना देखे। वो देख नहीं पाए भगवान, शिवदक्षाय विष्णु को देख नहीं पाए, वो बस उनको मालूम है शिवदक्षाय सागर है और उसके कहीं बीच में भगवान श्री विष्णु विराजमान है, ये उनको ज्ञान था, इसलिए वो किनारे में रह के ही उन्होंने प्रार्थना की कि पृथ्वी पे कंस आदि राजाओं के कारण बहुत बोझ बढ़ गया है, तो कृपया आप अवतार लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ हमें ये ज्ञात है, और भगवान कृष्ण ने भी कैसे बताया, खाली ब्रह्मा जी के हृदय में ये संदेश आया, मैसेज SMS, हाँ आजकल SMS है, उस समय अलग टेक्नोलॉजी थी, हार्ट टू हार्ट एस, हार्ट टू हार्ट मैसेज, HMS प्रशांत कह रहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने या विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के हृदय में खाली एक संदेश भेजा कि हमें ज्ञात है पृथ्वी की पूरी परिस्थिति और हम अवतार लेने वाले हैं। तो सारे देवताओं को भी अवतार अपने अपने यदुकुल भोज कुल अंधक कुल में जन्म लेने को बोलो। पर कहने का तात्पर्य यह है, हम अपने पॉइंट पे रह रहे हैं, कि भगवान जन्म कर्म चमे दिव्यम ये समझना इतना आसान नहीं है। हम देखते हैं बड़े बड़े देवता लोग भी क्षीर सागर तक ही पहुंच पाए, ये हो गई भगवान का जन्म। फिर भगवान के कार्य, वो भी हम व्रजधाम में है, कुछ दिन बाद यहाँ पे अभी हम जब छठी कर आते हैं और मथुरा के लिए साइड मुड़ते हैं, वो साइड मुड़ेंगे तो चौमुहा करके जगह है जहां पे ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और बच्चों को ग्वाल वालों को छुपा के रखा था। हाँ ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए थे भगवान कृष्ण की लीलाओं से, वो भी समझ नहीं पाए। इंद्र जी भी विमोहित हो गए थे, हाँ वो भी समझ नहीं पाए। तो भगवान के जन्म तक सारे देवी देवताओं पहुंच नहीं पाए। जब उनकी लीलाएं चल रही थी तो ऐसे शास्त्रों में वर्णन आता है कि देवी देवता ऊपर से देखने को ट्राई करते थे, जैसे हम अभी ऊपर से देखते हैं, हाँ वो अपने स्वर्ग लोग या अपने विमान में से देखने को ट्राई कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे कि कृष्ण की क्या लीलाएं चल रही हैं, पर उनको वो कृष्ण कहाँ है और क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता था। कृष्ण की लीला इतनी सूक्ष्म और दिव्य स्तर पे होती है कि वो प्रयत्न कर रहे हैं कृष्ण की लीला देखने के लिए, पर उनकी नजर के परे है, उनकी नजर के परे हैं। और उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जो तिरोभाव है उसके बारे में भी श्रीमद् भागवत में यही चर्चा आती है कि जब जरा नामक वो शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पे एक बाण चलाया, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य शरीर के साथ गोलोक वृंदावन वापस चले गए। सारे देवी देवताओं वहां आकाश में जमा हुए थे, जैसे भगवान कृष्ण के जन्म के समय जमा हुए थे वैसे भगवान कृष्ण के तिरुभाव के समय भी जमा हुए थे सारे देवी देवता लोग। और हमें मालूम है कि भगवान कृष्ण ऐसे पांव आगे करके बैठे थे और अंगूठे पे वो जब बाण लगा तो भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग करने के पहले ऐसे आंखें मूंद ली। तो हमारे आचार्य बताते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने देखा कि सारे देवी देवता लोग आ गए हैं आकाश में, और हर एक देवता की इच्छा क्या थी कि जब भगवान कृष्ण पृथ्वी से जाएंगे तो कुछ क्षण के लिए उनको मैं अपने लोक में बुला लूंगा। हर एक देवता इन्विटेशन देने के लिए आए थे, आप हमारे घर में आ जाइए, आप मेरे लोक में आ जाइए। तो सारे देवता लोग ऐसे वेट कर रहे थे, भगवान कृष्ण जब ऐसे निकलेंगे तो मेरे घर में उनको मैं बुला लूंगा। पर भगवान कृष्ण ने देखा कि अभी मैं अपने सारी लीलाओं खत्म करके गोलोक जा रहा हूं और सारे देवी देवता आकाश में आ गए हैं, तो ये बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक जिम्मेदारी। तो उनको अवॉइड करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उनका इन्विटेशन लेने की जरूरत नहीं है, सब लोग देने की इच्छा थे पर भगवान कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। उसके बाद जब भगवान कृष्ण निकले पृथ्वी से तो इतने दिव्य स्तर में और इतने तेज गति से निकले कि कोई देव देवता समझ नहीं पाए कहां है भगवान, कहां जा रहे हैं। सब ऐसे ढूंढ रहे थे, जैसे कहते हैं एक उदाहरण में भागवतम में आता है कि जैसे बारिश के ऋतु में जब दो मेघ एक दूसरे के साथ टकराते हैं तब बिजली चमकती है और कभी कभी बिजली पृथ्वी पे आके गिरती भी है, पर वो बिजली का वेग और उसकी मूवमेंट, मतलब क्या कहें मूवमेंट को, उस हाँ उनका संचार, हाँ बिजली का वेग और उनका संचार इतना सूक्ष्म है कि आदमी बिजली का पथ निर्देशित नहीं कर सकता कि बिजली आका वो बादल से यहां तक ऐसे ऐसे करके आई। हाँ वो इतना सूक्ष्म है, वी कैन नॉट टेल द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जो बिजली गिरी आकाश से उसका पथ हम बता नहीं सकते, हमारे इंद्रियों के लिए वो इंद्रियों के परे है बिजली का मार्ग बताना। उसी प्रकार से देव देवताओं जो बादल से बिजली फेंकते हैं इंद्र, पर जब भगवान कृष्ण चले गए गोलोक वृंदावन तो उनके लिए भगवान कृष्ण का पद ढूंढना बड़ा मुश्किल था। वो कहां गए देख रहे थे, जैसे कभी कभी हम देखते हैं अगर कोई सुपरसोनिक जेट जा रहा है आकाश में तो आवाज वहां से आते हैं, हम वहां देखते हैं, पर कहीं तो भी विमान इधर होता है, हमें भी वो जहाज को ढूंढना मुश्किल जाता है। ये हमारे अनुभव में है, जब सुपरसोनिक जेट उड़ता है तो हम ढूंढते रहते हैं कहां आवाज आ रहा है और कहां हवाई जहाज है। तो ये अपने इंद्रियों के कैपेसिटी पे अवलंबित है। वैसे ही जो देवता लोग थे वो सारे जमा हो गए थे भगवान कृष्ण के तिरुभाव के समय, पर भगवान कृष्ण अपने सूक्ष्म और दिव्य स्तर पे अपने कार्य करते हुए आंखें बंद करके, क्योंकि उनको कोई इन्विटेशन लेने की इच्छा नहीं थी, उनको सीधा गोलोक वृंदावन वापस जाना था, इसलिए वो तुरंत अपने दिव्य स्तर से एकदम फास्ट मूवमेंट करके गोलोक वृंदावन चले गए। और सारे देव देवता खाली देख रहे थे कहां गए कहां गए कहां, कौन से रास्ते से भगवान श्री कृष्ण गए। ऐसे कहते हैं खाली शिव जी और ब्रह्मा जी को एक दो बार ऐसे कहीं दिखाई दिए ब्रह्मा भगवान कृष्ण, अरे हाँ और कहां गए चले गए। इस प्रकार से खाली शिव जी और ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए बीच बीच में, हम जैसे हम देखते हैं पंखा गोल गोल घूमता है, हाँ जब कभी हम लेटे और पंखा गोल गोल घूमता है तो पंखा किधर है वो हम बता नहीं सकते, है ना, हमें लगता है पंखा सब जगह पे है पर सब जगह पे नहीं है पंखा। अगर आपने अनुभव किया है मालूम नहीं कितने लोगों ने, पर ऐसे जब पंखे की तरफ देख रहे हो हम आग बंद करके खोलते हैं तो उस क्षण वो पंखा दिखाई देता है एक क्षण के लिए। हाँ वैसे ही शिव जी और ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए देख पा रहे थे भगवान कृष्ण को, अरे अभी इधर हैं फिर कहां गए। तो इसीलिए अगर हम हमारे इंद्रिय से प्रयत्न करें, हमारी इंद्रिय जो है वो तो देवताओं के इंद्रियों के सामने बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही अल्प है, बहुत ही अक्षम है। हमारे इंद्रियों से हम बहुत प्रयत्न करें या हमारे बुद्धि से भी, हम बोलेंगे आंख नहीं पर हमारी बुद्धि, इंद्रियों में सब आ गया। देवताओं का जो ब्रेन है वो हमसे बहुत शक्तिशाली है, देवताओं के आंख हाथ पांव हमसे बहुत प्रगत हैं, पर ऐसे देवता लोग भी बड़े बड़े ब्रह्मा जी भगवान शिव जी वो भी भगवान श्री कृष्ण के संचार को हलचल को उनकी लीलाओं को समझने में या देखने में अक्षम रहते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को अगर हमें इस तरह तत्वता जानना है तो हमें वही अध्याय के अगले श्लोक में कुछ श्लोकों के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, कि अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में कैसे भगवान कृष्ण हमारे उनके लीलाएं कैसे दिव्य है जानना है तो एक योग्य भक्त एक योग्य व्यक्ति जिसने ये लीलाएं जान ली हैं उनकी आप शरण जाओ। तीन चीजें बताई गई हैं, शरणागति सेवा और परिप्रश्न, ये तीनों चीजें आवश्यक हैं। जब हम शरणागति में जाते हैं नम्रता से, जब हम कुछ सेवा करते हैं और हम कुछ जिज्ञासा प्रकट करते हैं तो गुरु की कृपा से, ऐसे नहीं कि हम गुरु के पास गए दीक्षा ले ली, हाँ जैसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो बाद में सर्टिफिकेट मिलने वाला है, हाँ ऐसे नहीं है। यहाँ पे हम खुद के प्रयत्न खुद के बलबूते पे अगर गर्व रखते हैं अहंकार रखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमारा पूरा गर्व चूर चूर करके रहेंगे, भगवान श्री कृष्ण को गर्व बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए पूरी नम्रता से शरणागति के साथ प्रश्न पूछेंगे और सेवा करेंगे तभी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में समझ में आएगा। भगवान श्री कृष्ण बहुत उत्सुक है हमको मदद करने के लिए, बहुत कृपालु हैं। अगर हम देखें ये कृष्ण अवतार में ही सब जगह पे वो कृपा ही बांट रहे हैं, भक्तों को कृपा दे रहे हैं, आसुरों को कृपा दे रहे हैं, जो शांत लोग हैं ऐसे दूर उनको भी कृपा दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण होलसेल में कृपा बांट रहे हैं। पर सबसे बड़े कृपालु अवतार तो हैं चैतन्य महाप्रभु, पर भगवान श्री कृष्ण भी काफी कृपा बांटते थे। बड़े बड़े असुरों को भी उन्होंने बहुत दुर्लभ चीजें प्रदान की। अभी हम गए थे मथुरा नगरी में, हैं अभी भी, पर एक जगह पे गए थे जिसके पास कंस तील नाम की जगह रंगभूमि, जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा। कंस वैसे तो असुर था, उसने अनेक प्रकार के अत्याचार किए थे, लोगों को तकलीफ दिए थे, अनेक प्रकार के पाप कार्य किए थे, पर फिर भी वो किसी न किसी प्रकार से भगवान कृष्ण को स्मरण कर रहा था प्रतिकूल भावना में। फिर भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है चलो ये मेरा स्मरण तो कर रहा है, इसके ऊपर भी कृपा बांटी जाए। हमें मालूम है यहां पे मथुरा है और हम सुबह और वापस शाम को वृंदावन में जाएंगे। वृंदावन में कभी कभी भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल खेल खेलते हैं। प्रलंबा कुसुर के साथ वैसे खेल हुआ था एक बार, उनका ऐसे खेल था कि दोनों दो टीम में बंटवारा होता था सारे ग्वालों का, और फिर कभी एक दूसरे के साथ कुश्ती खेलते थे। तो कुश्ती खेलते थे तो कभी एक दूसरे को हरा रहे हैं। तो उसी प्रकार से वो जो आनंद कुश्ती खेलने का भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को दिया, वही आनंद भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके चाणूर और मुष्टिक को भी प्रदान किया, उनके साथ भी कुश्ती खेली वही आनंद। और भगवान श्री कृष्ण कुश्ती खेलते खेलते कभी कभी चाणूर और मुष्टिक को भी उन्होंने आलिंगन में पकड़ लिया। सारे देव देवताओं को भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान कृष्ण कहां है यह समझना मुश्किल जाता है, पर चाणूर और मुष्टिक को भी भगवान कृष्ण ने अपने आलिंगन में ले लिया। ये भगवान कृष्ण कृपा बांट रहे सबके लिए। उसके बाद हम बोलते हैं अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम याति नास्ति तो संशय। जो मृत्यु के समय मेरे को स्मरण करेगा वो मेरे धाम में अवश्य आएगा, इसके लिए आप संशय मत रखो। पर जब कंस के मृत्यु का समय आया तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कंस को अपने सिंहासन से नीचे खींचा, उनके छाती के ऊपर अपने चरण कमल रखे, और कंस हालांकि प्रेम से नहीं भय से, पर फिर भी उसका सौभाग्य देखिए और भगवान की कृपा देखिए कि मृत्यु के समय साक्षात भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल उसके छाती के ऊपर है और उसको भगवान कृष्ण की याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का चेहरा सीधा उसके आंखों के सामने है, चरण कमल मुख कमल, चरण कमल छाती पे है, मुख कमल नेत्रों के सामने है। ऐसा मृत्यु कंस को प्राप्त हुआ, यह भगवान की कृपा है। तुम देखते भगवान श्री कृष्ण अलग अलग असुरों से उनको कृपा बांटते हैं और उनको अलग अलग प्रकार से भगवत धाम लेके जा रहे हैं, भक्ति दे रहे हैं, मुक्ति दे रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण की आप लीलाओं का अध्ययन करेंगे तो भौतिक दुनिया में जो कुछ भी होता है सब भगवान श्री कृष्ण कर चुके हैं। एक उदाहरण के लिए अभी हमने एक बार मालूम नहीं एक जगह पे कहीं देखते हैं, पर काफी बार ऐसे होता है कोई हाथ गाड़ी है या कोई ऐसे गाड़ी है उसके नीचे कभी कभी लोग लेट जाते हैं, सो जाते हैं छांव के कारण, वो सेफ प्लेस होता है। कभी कभी बच्चे लोग को भी उसके नीचे सोया जाता है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी शक्ताशोर नाम की जो हाथ गाड़ी थी उसके नीचे लेटने की लीला करते हैं। सारे कार्यों का उद्गम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में है। हम ऐसा एक भी कार्य नहीं कर सकते जो भगवान कृष्ण ने नहीं किया, पर भगवान श्री कृष्ण के सब कार्य कृपा से पूरे होते हैं, मधुर रस से पूरे होते हैं और सबके लिए फायदेमंद होते हैं। दूसरा एक कार्य है, हमें आज बच्चे लोग यहाँ पे कभी कभी माता पिताओं को बच्चे लोग के लिए ऐसे कभी कभी मेला लगता है, मेला फेरी क्या फन एंड फेयर, तो उनको लेके आना पड़ता है। और फिर बच्चे लोग, वो एक जायंट व्हील होता है, जायंट व्हील, उसे बच्चे लोग को बिठाना पड़ता है। हम भी शायद बचपन में बैठे होंगे, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं, हाँ जायंट व्हील। तो भगवान, और हाँ अभी चौपाटी में अपने मंदिर के बाजू में समुद्र में एक बार कुछ समय पहले एक और खेल चालू हो गया था। उन्होंने बलून लाए थे, बलून, हाइड्रोजन के बलून, जिसमें 200 रुपए दो आप और आधा घंटा बलून को चिपक के ऐसे आकाश में जा सकते हो और फिर वहां से मुंबई को देख सकते हैं, 200 रुपए आधे घंटे के लिए। पर जब भगवान कृष्ण को ऐसे कुछ करना होता है तो भगवान कृष्ण अपने एक असुर को बुला लेते हैं। एक बार तृणावर्त जी आए थे, फिर भगवान कृष्ण बोले आई वॉन्ट टू हैव जॉय राइड, फन एंड फेयर में थोड़ा जायंट व्हील पे बैठना है, हाइड्रोजन के बलून पे बैठने की इच्छा है। तो भगवान कृष्ण अच्छे से उसके कंधे पे सवार हो गए, कंधे पे बैठते हैं बच्चे लोग पिता के। हर एक लीला को अगर हम देखेंगे, हर एक लीला का उद्गम भगवान कृष्ण में, खंधे पे बैठते हैं। तो भगवान कृष्ण तृणावर्त के खंधे पे बैठ गए अच्छे से और बोले चलिए ऊपर। तृणावर्त को लगा मैं मेरे बल से जा रहा हूं, बहुत ऊपर लेके गया, बहुत ऊपर। भगवान कृष्ण आनंद ले रहे थे ऊपर से वृंदावन धाम का दर्शन करने का, ही वाज एंजॉयिंग द एरियल व्यू ऑफ वृंदावन धाम। वृंदावन धाम का आकाश दृश्य भगवान श्री कृष्ण आनंद ले रहे थे। पर जब उनको ध्यान आया कि मेरा वृंदावन से निकल जाने के बदले व्रजवासी बहुत चिंता में है, तो उन्होंने सोचा कि अभी थोड़ा बदल लाना चाहिए। तृणावर्त को अहंकार हो गया था कि देखो मैं कितना ताकतवर हूं, भगवान कृष्ण को मैंने पकड़ लिया है और मैं उनको उठा के ऊपर जा रहा हूं। तृणावर्त को अपने ताकत पे अहंकार हो गया था। और एक साइड में वृंदावन में जो उनके भक्त थे वो बड़े विरह में थे, भगवान कृष्ण दिख नहीं रहे कहीं पे। तो उस समय तुम्हारा भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपना बाल रूप तो वैसे ही रखा पर अपना वजन बढ़ाना चालू कर दिया। तो जो जायंट व्हील के रूप में तुम्हारा जी ऊपर जा रहे थे वो नीचे आना चालू हो गए जबरदस्ती से। तुम्हारा तो पूरा प्रयत्न कर रहे हैं भगवान कृष्ण को लेकर और ऊपर जाए और ऊपर जाए, पर भगवान कृष्ण बोले अभी आपकी शक्ति खत्म हो गई। भगवान श्री कृष्ण वही छोटे रूप में रहे पर उन्होंने अपना वजन बहुत बढ़ा दिया और तृणावर्त बेचारे जबरदस्ती से नीचे आने लग गए। तृणावर्त बोले कि भगवान कृष्ण बहुत भारी हो गए। तो पहले उन्होंने बहुत टाइटली तृणावर्त ने भगवान कृष्ण को पकड़ रखा था और अभी वो बोलते मैं छोड़ देता हूं, पर अभी भगवान कृष्ण ने टाइटली पकड़ रखा था। हाँ वो पूरा प्रयत्न कर रहे भगवान कृष्ण को फेंकने का अलग करके। तृणावर्त बहुत बड़ा शक्तिशाली, उसके बाहु एकदम आजकल के रेसलर के समान थे, मैं बहुत फूले हुए, और भगवान कृष्ण नन्हे बालक थे। पर फिर भी तृणावर्त जो भगवान कृष्ण ने उनके गले में पकड़ रखा था ऐसे, हाँ तृणावर्त तो छुड़ा नहीं पाए और भगवान कृष्ण उसको लेके नीचे आके उसको जोर से शिला पे पटका और उसके सारे हड्डी चूर चूर हो गए। तो इस प्रकार से देखते हैं बेचारे तृणावर्तों को, कंस को, चाणूर मुष्टिक को, अलग अलग प्रकार के असुर को, जो मृत्यु हमें भी काफी प्रयत्न के बाद प्राप्त होता है, अनेक जन्म भक्ति करनी पड़ती है, 24 घंटे भगवान को स्मरण करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, उसके बाद जो हमें कृपा प्राप्त होती है, भगवान कृष्ण कृष्ण असुरों को भी ये कृपा व्रजधाम में प्रदान करते हैं। पर अगर हम व्रजधाम में भगवान कृष्ण के प्रति थोड़ा भी अनुकूल भाव, अनुकूल न कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव में भगवान को स्मरण करने का प्रयत्न और आदत करेंगे तो जरूर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम पे प्राप्त होगी और इससे हम भगवान के जन्म कर्म और उनके लीलाएं कैसे दिव्य हैं ये समझ सकते हैं और मृत्यु के समय हम भगवान को याद रख सकते हैं और भगवान हमें जहां भेजेंगे वहां हम जा सकते हैं मृत्यु के बाद भगवान की इच्छा के अनुसार। तो श्रीमान गौरांग प्रभु भी आ गए हैं, हमारा ट्रेलर मालूम नहीं सही रहा कि नहीं, पर हमारा जो ट्रेलर होता है वो अभी समाप्त हो गया है, अभी मेन प्रवचन चालू होगा। तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि आपके थोड़े समय इतना सही उपयोग में नहीं गया। फिर धन्यवाद। हरे कृष्ण।